नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे मुल्क में जो लोग हैं अगर उनके पास अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे जो हैं वो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको घर ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये फॉरेन से लोग आके कर रहे हैं.
विच इज ट्रू.
लेकिन भाई साहब आपकी तो इकोनॉमी उन फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से चल रही है ना. आपके तो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वही कर रहे हैं, राइट? तो आपकी तो एक आपके मुल्क में रियल एस्टेट ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? और तो कुछ भी नहीं चल रहा, चीजें तो ठप हो रही हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, राइट? तो उनकी वजह से. और वो इन्वेस्टर हैं जो क्या कि आपकी प्राइस पूछते ही नहीं है. आपने कहा जी $1 million का घर है, अच्छा जी ठीक है दे दो. दो का है, अच्छा जी दे दो.
बस अगर उससे एक नुकसान भी ये हो रहा है कि वो जो ऑर्डिनरी पीपल इन द फर्स्ट
टाइम घर नहीं मिल रहे हैं, उनको घर नहीं मिल रहे हैं,
प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं.
हाँ जी,
उसकी वजह से इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर देम.
हाँ जी. अच्छा जी, जगमीत सिंह साहब जो थे अल्बर्टा में थे और आज इन्होंने काफी जम के जो है अटैक्स किए हैं ट्रूडो साहब के ऊपर भी, और इन्होंने कहा है कि ये जो हैं जो कट्स डालते जा रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर, तो जब मैं आऊंगा तो मैं इन हेल्थ केयर के जो कट्स हैं इनको मैं खत्म करूंगा. लेकिन वैसे ये मैंने देखा कि ये इनकी एक जो पॉलिसी है ना, ये कंसिस्टेंट है. ये इनके जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे तब भी ये कहते थे कि हम हेल्थ केयर कट्स को काटेंगे. अब कितना इन्होंने काम किया है उसके ऊपर वो नहीं अभी हमें पता है, लेकिन अब ये आज जगमीत सिंह साहब ने फेडरल लेवल के ऊपर भी ये बात कही है. अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था कि फोर्ड साहब ने कहा है कि अगर कोई वैक्सीनेट नहीं कराएगा, यानी प्रोविंशियल लेवल की ये बात है, कंजर्वेटिव लेवल की, ये कंजर्वेटिव पार्टी जो फेडरल लेवल पे है उनका दूसरा वो है, वो कहते हैं जी उनकी चॉइस है लोगों की, वो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं कि नहीं. लेकिन फोर्ड साहब ने कहा था कि हमारे कॉकस से मैं निकाल दूंगा उसको जो अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराएगा प्रोविंशियल लेवल पे. और आज एग्जैक्टली वही हुआ है. ये चैटम कैंट लेमिंगटन के जो एमपीपी हैं, ये रिक निकल्स, ये दो जो हमने कल बताया था कि दो एमपीपी जो है वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, उनको आज कॉकस से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं और मेरी वाइफ जो है हमने चूज किया कि हमको नहीं कराना है वैक्सीनेशन. अच्छा, अब जो दूसरी है वो है क्रिस्टीना मिटस. अब ये देखना है कि क्या उनको भी कॉकस से निकाला जाएगा कि नहीं, क्योंकि फोर्ड साहब ने थर्सडे का दिन दिया था कि थर्सडे
आज 5 बजे का
आज हाँ, तो आपने कराना ही है वैक्सीनेशन, तो अगर आज आपने नहीं कराया तो आप फिर मुश्किल में फंस सकते हैं. एक इप्सोस पोल करवाया था ग्लोबल न्यूज वालों ने, और इसमें उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या आप ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो करें वैक्सीनेशन लगवाएं, या उनके पास कोई सम काइंड ऑफ पासपोर्ट होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, तो उसके इनके पास बड़े एनकरेजिंग रिजल्ट आए हैं. इप्सोस पोल का कहना है कि तकरीबन अब 80% लोगों को, जिनको कि हमने किया, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स, टीचर्स, ये जो पब्लिक डीलिंग में जो लोग हैं, एटलीस्ट इनको तो मैंडेटरी इनके लिए होना चाहिए कि हर हाल में इनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए. और अगर आप उसके लिए एक प्रूफ भी अपने पास रखना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा आइडिया है, अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए. अच्छा, इसके अलावा 72% लोगों ने कहा कि ये जो बात आजकल हो रही है वैक्सीनेशन जो पासपोर्ट्स की है, तो वो भी अगर आप देंगे तो वो भी एक अच्छी चीज है. तो कहने का मतलब ये है कि जो अब मेजर पब्लिक ओपिनियन जो है इसी तरफ जा रहा है कि भाई आप लोगों को वैक्सीनेशन कराना जो है जरूरी है.
वैसे भी 80% लोगों ने तो कम से कम एक वैक्सीनेशन करा लिया.
हाँ जी बिल्कुल. लेकिन ये इस तरह के लोग हैं ना मजीद भाई, ये रिक निकल्स की तरह की जिन्होंने एक भी नहीं कराई है, तो हैं अभी. आज एक अच्छी अनाउंसमेंट ये है कि पुटमन इन्वेस्टमेंट्स वाले जो हैं, ये जो ऑन्टेरियो की बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एनकास्टर में ये हैं, और इन्होंने आज कहा है कि ये जो बंद हो रहे थे ना, आपको हमने कुछ अर्सा पहले, कोई 2-1.5 साल पहले बताया था कि ये टॉयज आर अस और बेबीज आर अस ये सारे शटडाउन शायद हो रहे हैं, तो ये टॉयज आर अस और बेबीज आर अस जो हैं ये सबको खरीद रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट ये जो इनके जो एम्प्लॉयज थे, कुछ तो एम्प्लॉयज थे इनके वॉन हेडक्वार्टर्स में और कुछ थे 10 different जो प्रोविंसेस के अंदर, 81 stores हैं इनके, तो उसमें 5,000 तकरीबन लोग काम करते थे. तो अब जबकि ये उनको ले लेंगे तो एटलीस्ट उन 5,000 लोगों की नौकरी बच जाएगी.
Exactly.
क्योंकि अमेरिकन ये जो कंपनियां थी ये तो कह रही थी कि जी हमने शट डाउन कर देने हैं ये ऑपरेशंस अपने कैनेडा में. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ये ले रहे हैं, और ये बड़ा अब स्ट्रांग ग्रुप बनता जा रहा है. मैं तो आई वॉज सरप्राइज टू नो कि इन्होंने 2019 में ये जो LMV जो ग्रुप है उसको भी खरीदा है. इट्स अ हाई एंड लग्जरी ग्रुप जो है वो है, तो उसको भी लिया. अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक दो बच्चे हैं मेहदी और अदनान, वो अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को सू कर रहे हैं, नॉट एनी प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है मॉरिसन साहब की, उसको जो है वो सू कर रहे हैं। अच्छा, उसके बारे में वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं जी कि ये बच्चे जो हैं जकार्ता से बोट में बैठ के ऑस्ट्रेलिया में आए थे और इनको जो है भेज दिया गया था नोरू के एक आइलैंड पे। नोरू जो है उसने एक डील साइन की हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ कि जब भी कोई रेफ्यूजीज या जब भी इस तरह के कोई बंदे आपके पास जब आएंगे तो आप हमारे पास भेज दें जब तक कि आपका पेपर वर्क नहीं हो जाता। तो वहां पे जो हालात है ना नोरू का, वो उसमें बहुत ज्यादा खराब है उसमें। तो ये जिस उस वक्त जो थे वहां पे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे वो इनके यही हैं, ये जो स्कॉट मॉरिसन जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं वो थे। तो वो कहता है इनका लॉयर कि उसने इतना इनका केस खराब कर दिया और पेपर वर्क जल्दी से नहीं किया कि इन बच्चों को उधर रहना पड़ा और बहुत फिजिकल और मेंटल इनको हरासमेंट जो है वो इनको सहनी पड़ी। अच्छा, वहां पर जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने भी कहा है कि ये इतने कोई खराब हैं ये नोरू के लोग कि जो भी कोई उधर ऐसे ये जो बेचारे रेफ्यूजीज या जो कोई आते हैं उनको उधर भेजा जाता है, रेप करते हैं उनको, फिजिकल असॉल्ट उनको करते हैं, इतने कोई जालिम है कि अगर कोई सड़क पे जा रहा है ऐसे ही अपने किसी ख्याल में ट्रक उसके ऊपर से गुजार के चले जाएंगे, मर्डर कर देंगे लोगों को। तो काफी वहां पे जो है ना खतरा है,
ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं
वहां पे। तो मैं आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन साहब हैं, बड़े ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन दुनिया में बनते हैं, वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो ये मुस्लिम कंट्रीज में क्या हो रहा है, इनके अपने खुद के मुल्क के साथ के में जो आ रहे हैं लोग उनके साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर इनकी नजर नहीं है, या जस्ट यानी कि नॉट इवन नेक्स्ट डोर, राइट अंडर हिज नोज, राइट वट एवर इज गोइंग ऑन। तो ये हुआ, तो इसलिए इनके लॉयर ने कहा जी हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ये कर रहे हैं कि आपने अननेसेसरली इनका पेपर वर्क जो है किया ही नहीं है, अगर कर लेते तो इनको डिटेंशन में ना जाना पड़ता, तो ये बच जाते, तो ये अब करेंगे। अमेरिका के अंदर अभी थोड़ी देर पहले जी बड़ी अजीब बात हुई है, फिर से वाशिंगटन डीसी के अंदर एक आदमी है, उसका नाम है फ्लॉयड रे रोजनबेरी, ये नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला है, 49 इयर्स इसकी एज है। ये जी वहां पे उसने ट्रक लाके जी उधर वो खड़ा कर दिया और इसने उनको जो है इशारे कर रहा है ट्रक के अंदर से, लिख लिख के बात कर रहा है, यानी मुंह से नहीं बोल रहा, लिख लिख के बात कर रहा है कि मेरे पास तो बॉम्ब है और ये थ्रेट है। अच्छा, अब ये देखें ना आप, लाइब्रेरी जो है ये कांग्रेस की और ये सेशन चल रहा है वहां पे कांग्रेस का, तो वहां पे तो खलबली मच गई। तो फिर जी सारे ये FBI तो ये तो वो, तो सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आके वहां पे खड़ी हो गई, उन्होंने सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, बहरहाल बड़ी इसके साथ निगोशिएशन की, और ये स्टाइल नहीं है वैसे अमेरिकन पुलिस का, वो एकदम गोली मार देते हैं, लेकिन बड़ी देर 5 घंटे से बात करते रहे कि भाई तेरा क्या मसला है, क्या है, बहरहाल इसको जी इसने सरेंडर किया, इसको पकड़ा, इसको निकाला। अच्छा, ये सारा जब ड्रामा चल रहा था ना तो अमरीका के अंदर तो ये ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी, तो इसकी बीवी कहीं बैठी देख रही थी, वो बीवी कहती है हाँ मैंने देखा इसको, लेकिन ये तो इस तरह का बंदा ही नहीं है, हाँ इसके पास कोई आर्म्स शार्म्स तो होते हैं बट एक्सप्लोजिव्स नहीं है, बॉम्ब नहीं है जिसका स्केयर दे रही है। तो अब अभी तक तो पुलिस ने कोई डिटेल्स नहीं दी है, बहरहाल पुलिस ने कहा जी हमने इसको पकड़ लिया और हम पता करेंगे इसका मोटिव क्या था, लेकिन बहरहाल ये उधर काफी गालियां वालियां अमेरिकन गवर्नमेंट को देता रहा है, ये कहता है कि तुम्हारा हेल्थ केयर ठीक नहीं है, तुम्हारी मिलिट्री ठीक नहीं है और तुम जो अफगानिस्तान में कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, तो इस तरह करके जो है ये बातें करता रहा है। तो बहरहाल अब इसको पकड़ा है तो अब देखेंगे अब इसका क्या मोटिव था, क्या है, गुस्से में है शायद या क्या है, बहरहाल पता नहीं इसके पास अब
एक्सप्लोसिव,
हाँ गुस्से में बहुत ज्यादा, बहुत गालियां इसने दी कि तुम लोग क्या कर रहे हो और ये यार वो है फलानी है। बाइडन साहब ने जी एक इंटरव्यू दिया है ABC गुड मॉर्निंग अमेरिका को और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो तालिबान हैं ये चेंज होने वाले नहीं हैं, ये वही हैं ये जो टेररिस्ट हैं, लेकिन अब इनके अंदर एग्जिस्टेंशियल जो है वो क्राइसिस शुरू हो गया है। और भाई साहब वो तो मालिक बने बैठे हुए अफगानिस्तान के, तो अपनी एग्जिस्टेंस की फाइट कैसे वो कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो, अभी भी आप अंकल सैम किस मूड में बैठे हो। बहरहाल जी इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा जी कि अब इनके ऊपर है कि ये कितना इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और उधर एक उनसे क्वेश्चन किया गया, उन्होंने कहा आपको लगता है कि अलकायदा का अभी भी कोई थ्रेट है इनके ऊपर अमेरिकन में, उन्होंने कहा नहीं, अलकायदा का थ्रेट जो है अब दूसरे इलाकों में है दुनिया के, अफगानिस्तान के अंदर नहीं है ये अब थ्रेट जो है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो है इनकी, इन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान में आपको जो है जाके ये जो औरतें और लड़कियां इनके राइट्स के बारे में आपको बात करनी चाहिए, अपनी फोर्सेस भेजनी चाहिए, या उन्होंने कहा जी ये मिलिट्री के थ्रू आप राइट्स औरतों को नहीं लेके दे सकते, तो ये तो बिल्कुल ही आप सवाल जो है वो कर दें, तो भरा लिए है। लेकिन अब बाइडन साहब को फिर से पता होना चाहिए, और आज हम एक रिपोर्ट करेंगे फोर्ब्स मैगजीन में आई है कि इन्होंने क्यों लूज किया, कि इनका कोई कभी इन टच थे ही नहीं ये ग्राउंड रियलिटीज के साथ अफगानिस्तान में, तो इसलिए दैट्स वाई मैसिवली जो इन्होंने लूज किया वहां पे इसलिए किया। अच्छा जी, तो ये वो कहते हैं जी कि नहीं, ये जो है ये तालिबान जो है वैसे ही है और ये ठीक नहीं है। और अगर आपने तालिबान की आजकल के अगर बयान सुने हुए तो मेरे ख्याल में आपको 1996 से काफी चेंज समझ आई होगी। कहीं फोर्ब्स मैगजीन की जनाब ये रिपोर्ट है और इसके अंदर उन्होंने इंटरव्यू लिया है एक जो है इंडिपेंडेंट स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, सियागल साहब जो हैं, इनका इन्होंने इंटरव्यू लिया है। इन्होंने फोर्ब्स मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमेरिका की जो लॉस है अफगानिस्तान में उसके 7 मेन रीजंस हैं। अच्छा जी, अब वो 7 मेन रीजंस क्या हैं इसके फेलियर के, 20 ईयर्स वहां पे गुजारे फिर भी फेलियर के रीजन क्या है। एक तो वो कहते हैं जी कि पेंटागन और जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसके पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी कभी थी ही नहीं, वो कभी उसके पास नहीं होती थी। क्या होता था कि ये जो है इनका एक ही गोल होता था कि तालिबान को खत्म करो, बस तालिबान को खत्म करो, ये सारे जो स्प्लिंटर ग्रुप हैं इनको बस खत्म करो, और अगर कहीं पे आप कोई किसी को ब्राइब दे के काम करा सकते हैं उनको ब्राइब दे दो कि मतलब है अमेरिकन डॉलर्स के लिए लोग बड़े मरे जा रहे हैं उनको वो दे दो और फिर जो है आप करें। तो ये कहते हैं जी कि ये सारी जो अमेरिका की थी मिस अलाइंड, ये उनकी पॉलिसी एब्सोल्युटली मिस अलाइंड थी। अच्छा जी, दूसरा उन्होंने कहते हैं जी यहां पे अफगानिस्तान में इन्होंने शॉर्ट टर्म डिसीजंस बनाने शुरू किए हैं। शॉर्ट टर्म, अच्छा जी क्या शॉर्ट टर्म डिसीजन बनाए? इन्होंने कहा जी कि हम अगर कोई पैसे लेके आपके कोई काम कर रहा है उसको बोलो जी हां जी ये करो और ये हमारा काम कर दो। और फिर इन्होंने क्या किया कि हर वक्त ट्रुप्स को इधर से उधर इधर से उधर जो है ये शफल करते रहते थे। यानी उसने बड़ी मजे की मिसाल दी है, वो कहते हैं कि ये बजाय इसके कि ये 20 ईयर का काम जो है 1 ईयर में करना चाहते थे, बजाय इसके कि एक साल के अंदर एक ही साल का काम करते 20 ईयर्स का ना करते। तो वो कहते हैं जी हर वक्त वो इसीलिए वो जो है ट्रुप्स जो है वो भी परेशान और वो भी एंग्जाइटी में और कंफ्यूजन में रहते थे। अच्छा जी अब इधर कर दें, अब इधर चले जाएं, अब उधर चले जाओ, अब ये करो, अब वो करो। तो कहते हैं कुछ ये चाहते थे 20 साल की चीजें हम फटाफट कर ले एक साल में, तो ये पॉसिबल नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते ऐसे ना चीजों की, आहिस्ता आहिस्ता आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, फिजिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं। अच्छा फिर वो कहते हैं जी सबसे बड़ा जो मुद्दा यहां पे था अफगानिस्तान में इनके साथ जो है, इनको अफगानिस्तान का कल्चर ही समझ नहीं आया। इन्होंने कल्चर को तो समझने की कोशिश की नहीं, बस ये अपनी वो पकड़ के ना बंदूकें बस वो उधर खड़े रहे हैं। इन्होंने लोकल्स के साथ मिलना जुलना, खाना पीना, उनके कपड़े पहनने, उनके गीत गाने, वो इन्होंने कुछ कल्चर कुछ भी नहीं इन्होंने सीखा। और इन्होंने हमेशा ये किया कि जी अपना जो अमेरिकन लीगल सिस्टम है वो लगाएं।
वो दरअसल चक्कर ये है कि उसका कहने का मकसद ये है कि ये उनके कभी दोस्त नहीं बने।
हाँ दोस्त नहीं बने, कहते हैं अपना लीगल सिस्टम बनाया। इनको पता नहीं है कि अफगानिस्तान जैसा जो कंट्री है वो जिरगों के ऊपर चलता है।
सही।
उनकी हर चीज जिरगे तय करते हैं, तो वो जो ट्राइबल एल्डर्स हैं उनके साथ दोस्तियां बनाने की जरूरत थी। तो ये जी वो अपना, वो कहते हैं वो अफगानिस्तान में जब ये अपना अमेरिकनाइज्ड वो लीगल सिस्टम लाते थे उनको समझ नहीं आती थी।
तो ड्रग लॉर्ड एंड वॉर लॉर्ड थे ना, उनके साथ इन्होंने दोस्ती बना ली।
हाँ
मगर और
जिरगे वालों के साथ थे, वो जो शरीफ किस्म के ट्राइबल एल्डर्स थे जो बड़े मतलब है उधर पायस और अच्छे लोग थे उनके। तो अच्छा जी एक ये रीजन था। फिर कहते हैं जी इन्होंने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इतने कोई बकवास किस्म के थे कि जब भी कभी कोई बॉम्बिंग्स हो रही हैं कुछ हो रही हैं, जैसे जी इन्होंने स्पेंड किया जी रोड्स बना लो, अच्छा जी रोडे बना लो, ब्रिज बना लो, ये कर लो, अच्छा कोई एक दो हॉस्पिटल्स भी बनाए, चलो ठीक है वो ठीक है। कहते हैं वो क्या होता था, वो बॉम्बिंग्स होती थी, वो रोडे उड़ गई, ब्रिज टूट गए, चीजें टूट गई, तो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन चीजों पे लगा दिया। लेकिन
बनाओ
हाँ हाँ, और लेकिन लोगों के साथ जो वो जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है ना वो अच्छा जी वो नहीं बनाया। अच्छा फिर वो कहते हैं जी कि ये यूएस मिलिट्री और एड एजेंसीज जो थी इनके पास, माजद भाई एंड दिस इज सो फनी, दिस इज अगर ये फोर्ब्स मैगजीन का ये आर्टिकल ना होता तो मैं कहती ये बिल्कुल बकवास है, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, बट दिस हैज अपीयर्ड इन फोर्ब्स यूएसए, नॉट इन फोर्ब्स मिडल ईस्ट और फोर्ब्स इंडिया और समवेयर, फोर्ब्स यूएस। वो कहते हैं जी इनके पास ट्रेंड फोर्सेज नहीं थी वहां पे, ये जो आप कहते हैं ना कि इतनी जल्दी क्लैप्स क्यों कर गई, क्लैप्स क्यों कर गई, एंड दिस इज अ ह्यूज पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि ये अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इतने दिन विद इन 15 डेज ये कैसे क्लैप्स कर गई हैं, जिसका के बड़ा दावा करते थे 300,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, दे विल डिफेंड देयर कंट्री। कहते हैं जी उनको ट्रेन कोई एक्सपर्ट्स ने नहीं किया, अनट्रेन्ड इन्होंने लोग वहां पे भेज दिए, और वो क्या करते थे, नाउ दिस यू विल रियली लाफ योर हेड ऑफ माजद भाई, दे यूज टू वॉच अमेरिकन सोप ओपराज एंड टीवी शोज लाइक NCIS एंड कॉप्स, वहां से टैक्टिक सीख के अफगानिस्तान के सोल्जर्स को वो सिखाते थे.
वाओ,
कैन यू इमेजिन. तो कहते हैं जी कि एक तो ये करते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद जी इन्होंने क्या किया कि बस एक खास इलाका जो था जी बगराम है, वहां से भी अपने दो चार सिपाही छोड़ के एयरपोर्ट छोड़ के भाग गए, या काबुल है, या के मतलब है इस तरह के दो चार इलाके इन्होंने पकड़े होते. ये कहते हैं जी इनको पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान का ये जो ह्यूज रगेड एरिया जिसकी तरफ ये गए ही नहीं, जिसको कि इन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, वहां पर ही तो ये सारे लोग बैठे हुए थे. ये दो चार इलाकों को, डिस्ट्रिक्ट्स को, प्रोविंसेस को या सिटीज को पकड़ के बैठे रहे, और जब तक इन लोगों की डेवलपमेंट उन ह्यूज स्वैथ्स ऑफ द कंट्री जो है उसके अंदर वो अपनी आराम से ट्रेनिंग राइट अंडर देयर नोज करते रहे, और 20 साल इनको पता नहीं चला कि वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं. वो पॉइंट्स बना रहे थे कि कहां कहां से तुमको हमने घेर रहे हैं, कहां कहां से पकड़ के हमने तुमको मारना, और अगर ऐसी नौबत आती तो उन्होंने वही करना था कि उन सब पहाड़ों से नीचे उतर के इनको भून देना था अंदर ही वैलीज के अंदर ऐसे करके. तो ये इन्होंने, तो ये आज का आर्टिकल जो है ना माजिद भाई, ये बड़ा ही जबरदस्त है. ये इट्स अ वेरी लॉन्ग आर्टिकल, मैंने उसमें से मेन चीजें जो है वो निकाली हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं फोर्ब्स मैगजीन में तो आप पढ़ सकते हैं. दूसरी एक और फोर्ब्स मैगजीन की जबरदस्त आज एक और आर्टिकल है जो वो कह रहे हैं कि ये कितने बुरे तरीके से इन्होंने लूज किया है, और अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट अमेरिकन ने ह्यूमन रिसोर्सेज में किया होता तो इनके लिए कितना अच्छा होता. अच्छा जी, आज की फोर्ब्स की जो ये रिपोर्ट है वो कहते हैं जी कि 20 साल वहां पे रहने के बाद यूएस स्पेंड $2 trillion इन अफगानिस्तान. उसका ब्रेक डाउन ये दे रहे हैं $2 trillion का. वो कह रहे हैं विच इज $300 million पर डे. $300 million पर डे एवरी डे फॉर टू डेकेड्स. अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं दिस मीन्स ऑल्सो $50,000 टू ईच अफगान, क्योंकि अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 40 मिलियन है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैन टू मैन इन्होंने रिलेशंस या लोगों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की होती अच्छा होता, बरा दे लॉस्ट. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी यूएसए ने ये जो तालिबान को अपने से दूर रखने में उतना पैसा स्पेंड किया जितना के जो के कंप्लीट नेट वर्थ है जेफ बेजोस की, एलॉन मस्क की, बिल गेट्स की एंड 30 richest billionaires ऑफ यूएसए. उतना पैसा इन्होंने खराब कर दिया सिर्फ तालिबान को धतकारने में. आप सोचें जरा.
एंड रिजल्ट,
अंडा अंडा रिजल्ट. फिर 80 billion दे स्पेंट टू ट्रेन अफगान आर्मी विच वॉज ट्रेन्ड ऑन टीवी शोज, राइट. असल ट्रेनिंग नहीं थी उसके अंदर, मगर पैसा कितना लगा दिया, 85 billion. ओके, फिर इन्होंने क्या किया जी, दे हैव बीन गिविंग अफगान सोल्जर्स 750 million पर ईयर पे देते थे उनको. कि जी हम तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं तो उसकी हमें देते हैं. ब्राउन यूनिवर्सिटी जो है उसने अपना एक वो निकाला है, पूरी कॉस्टिंग निकाली है, जिसके ऊपर फोर्ब्स मैगजीन ने आज ये अपना आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर किया है. ब्राउन यूनिवर्सिटी तो थोड़ा सा और भी कहती है, वो कहती है 2 trillion नहीं था ये, 2.26 trillion था. इसके अलावा इन्होंने क्या लूज किया, 2500 सोल्जर्स यूएस के सोल्जर्स मरे, 4000 यूएस सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स मरे 20 साल में, 69,000 अफगान मिलिट्री पुलिस जो होती है मिलिट्री पुलिस मरी, 47,000 सिविलियंस मरे, 51,000 जो अपोजिशन के लीडर्स थे जो फाइटर्स थे वो मरे, और ये इस सारे का जो ये जो यूएस कैजुअलिटीज थी ये जो सारी थी इसका जो है इसके ऊपर जो है तकरीबन स्पेंडिंग जो थी $300 billion.
Wow.
आप सोचें जरा. फिर वो कहते हैं जी कि अब क्या हुआ है, हुआ ये है कि इन्होंने तो लिए हुए कर्जे, इन्होंने तो कर्जे लिए हुए, कर्जों के ऊपर ये सारी कुछ चीजें चलाते रहे हैं. ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर कहते हैं जी कि इसका इन्होंने ऑलरेडी ओवर 500 billion इंटरेस्ट पे किया है ये जो पैसा इन्होंने लोन पे इतना ज्यादा उठाया था उसका तो इंटरेस्ट अभी तक कर चुके हैं. स्टिल रीचिंग 2050 दिस डेट विल रीच 6.5 trillion US dollars, विच मीन्स $20,000 हर बंदा जो अमेरिका में रहता है, ईच एंड एवरी सिटीजन इन यूएस ओज टू द ये लोन के टुवर्ड्स लोन. आप सोचे जरा. तो ये उन्होंने आज सारा फोर्ब्स मैगजीन ने ये आज ये ब्रेक डाउन दिया.
तो ये पॉइंटिंग फिगर ओनली ऑन जो प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन है उन पे नहीं है ये.
नहीं
मींस के दे आर फोर अदर प्रेजिडेंट्स और उसमें से दो प्रेजिडेंट ऐसे भी थे जो उन्होंने 4 से 8 साल लगाए.
यस वही अच्छा. अच्छा जी, आज अफगानिस्तान ने अनाउंस किया है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंदजादे वही रहेंगे, हेड रहेंगे, और लेकिन जो गवर्न करेगा अफगानिस्तान को वो काउंसिल गवर्न इनको करेगी और ये ओवरऑल इंचार्ज जो है ये रहेंगे. और इनके जो स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद साहब ने, उन्होंने आज कहा कि अखुंदजादे साहब जो है यानी कि देखेंगे हमारे जो है वो हेड रहेंगे. और इन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम आज जो है एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है वो हम आज यहां पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं. और इनकी आज जो है 102nd एनिवर्सरी थी जो इन्होंने अफगानिस्तान ने जो गोरों को यहां से भगाया था तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है, तो उस मौके पर इन्होंने ये अनाउंस किया है. और उन्होंने कहा है कि हमारा जो सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वही होएगा जो हमने 1996 से 2001 में किया, यानी कि अंडर इस्लामिक शरिया ये जो है हम चलाएंगे और इसके अंदर जो है इस्लामिक लॉज चलाएंगे. और इसके अंदर जैसे कि उस वक्त के मुल्ला उमर जो थे वो सिर्फ शेडो में रहते थे, डे टू डे जो काम होते थे वो काउंसिल चलाती थी. सेम इज गोइंग टू बी द केस नाउ. हैबतुल्लाह अखुंदजादे जो है वो शेडो में रहेंगे और काउंसिल जो है, हाँ, और काउंसिल जो है वो चलाएगी. वो चलाएगी, ठीक है जी. अच्छा, ये तालिबान ने आज जो है जो जितने भी हमारे मौलवी हैं अफगानिस्तान के उनको कहा है कि जितने भी आप इमाम्स हैं और प्रीचर्स हैं आप लोग जो हैं लोगों को कहें कि ये भर भर के जो उसमें जहाजों में बाहर जा रहे हैं मुल्क से ये ना जाएं, मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें, यहीं पे रहें. और खतीबों को भी उन्होंने कहा है कि हर जुमे के जुमे आप ये अपनी मॉस में अनाउंस करें कि इस मुल्क में रहोगे, इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम करोगे तो इस मुल्क की नेशनल यूनिटी में इजाफा होगा और इस मुल्क के अंदर जो है वो बेहतरी आएगी, लेकिन फॉलो सबको इस्लामिक लॉ करना पड़ेगा.
सही,
तो ये है ना जाए. इंडिया के अंदर जी आज जो जम्मू और कश्मीर है उनके जो एक लीडर हैं बहुत बड़े गुलाम हसन लोन, उनको आज गोली मार के जो है कुछ मार दिया गया है उनके और उनके अपने उसके रेजिडेंस पे ही मारा गया है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो इसके ऊपर आज जो वहां के लीडर हैं उन्होंने बड़ा रिएक्शन शो किया है. उमर अब्दुल्ला और महमूदा मुफ्ती जो हैं ये जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स भी थे वहां के, उन्होंने कहा कि ये तीसरा ऐसा वाकया है गुलगाम के एरिए में कि एक लीडर को जो है मारा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही सैड इंसिडेंट है और अब ये लग रहा है कि आम लोगों को या पुलिस या मिलिट्री को छोड़ के अब मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मारा जा रहा है. तो उसके ऊपर उन्होंने आज जो है लीडर्स ने बड़े अफसोस का इजहार किया है. अच्छा जी, एक है इंडियन एनालिस्ट एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं कर्नल रिटायर्ड दनवीर सिंह. कर्नल रिटायर्ड दनवीर सिंह जो हैं ये इनका आज एक इन्होंने अपनी एक यूट्यूब के ऊपर एक अपनी वो छोड़ी है, छोटी सी बात अपनी छोड़ी है. और इनके मुताबिक जो है पाकिस्तान ने कमाल किया है जो कुछ ये अफगानिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान की बड़ी आज इन्होंने तारीफ की है. अच्छा जी, तारीफ भी कैसे की है. उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं अब ये एक नया जियो इकोनॉमिक अलायंस बनाने लगी हैं जिसके के लिए इंडिया को खबरदार होना चाहिए. उन्होंने कहा जी कि इंडिया हैज बीन completely expelled from this area just like US has been expelled from this area. वो कहते हैं जी के पाकिस्तान की जो ISI है which is now led by Lieutenant General फैज हमीद, उन्होंने क्या कमाल का तरीका जो है वो अपनाया है. और वो कहते हैं जी ये जो कर्नल रिटायर्ड दनवीर सिंह जो हैं वो कहते हैं जी कि ये जो सक्सेस तालिबान को मिली है ये इनकी स्ट्रेटजी का नतीजा है. कहते हैं जी इन्होंने बैठ के जो है बड़ी स्ट्रेटजिकली काम खेला है उधर रीजन में. वो खेला क्या है कि जो इनके जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, वो खुद उन्होंने इंडिया से कहा है कि भई हम बिल्कुल सीज फायर चाहते हैं LOC पे. इसलिए कि ये तालिबान के साथ बात कर रहे थे, इसलिए कि इनको पता था कि जल्दी वहां से यूएस जाने वाला है तो तालिबान वहां पे काबिज होएगा, तो हमको अपने मुल्क के लिए दो फ्रंट्स खोलने की जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट सिविलियन गवर्नमेंट अगर नहीं भी चाहती थी दोस्ती इंडिया से, तो मिलिट्री गवर्नमेंट ने कहा जी कंप्लीट क्वाइट होना चाहिए एलओसी पे, और एज अ रिजल्ट इंडिया खुश हो गया इस बात पे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमारा भी वो जो है एक वो सेक्टर जो है वो बिल्कुल मतलब शांत हो गया, तो हमें भी खुशी है। तो उनको समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की ISI अंदर से स्ट्रेटजी क्या बना रही थी। एलओसी पे पाकिस्तान ने शांति की, तालिबान को थावड़ा दिया और उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है। अच्छा अब वो कहते हैं जी कि सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की एक्साइटेड हो गई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये तो अब मिलिट्री जो है इंडिया के साथ दोस्ती बनाना चाहती है, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया कि अब हम शुगर और कॉटन जो है वो इंडिया से मंगवाएंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट ने उनके सारे जो वो इरादे थे उसके ऊपर पानी फेर दिया और उन्होंने कहा जी नहीं नहीं इंडिया के साथ ट्रेड श्रेड नहीं हो सकती, तो ट्रेड रहने दें। तो कहते हैं जी उसके ऊपर जो है फिर बेचारे इमरान खान को यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन मिलिट्री अपना काम कर रही थी पीछे। ठीक है जी, इंडिया को एलओसी पे शांत कर दिया, उन्होंने अपनी सारी जो डाइवर्ट कर दी एनर्जी अफगानिस्तान की तरफ। इन्होंने कहा जी, और इन्होंने कहा कि तालिबान के अब हाथ जो हैं वो मजबूत किए जाएं ताकि और कोई बंदा यहां पे आ ना सके, क्योंकि आपको पता है ईरान का भी इंटरेस्ट है वहां पे, वो चाहते हैं जी शिया गवर्नमेंट है। इन्होंने कहा कि नहीं इनको मजबूत करो ताकि ये लोग आए, ताकि हमारे जो हैं ये मतलब अंडर असर रहे। इसके बाद वो कहते हैं जी इंडिया ने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया। इंडिया ने क्या किया जी कि यूएसए को खुश करने के लिए ये जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए थे उसके अंडर यूएसए की दोस्ती के खुमार में इन्होंने जी ईरान का जो ऑयल जो इनको डर्ट चीप रेट्स पे मिलता था इन्होंने जी वो लेना छोड़ दिया। छप्पर पोर्ट के ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे और उसको डेवलप कर रहे थे और वो सेंट्रल एशिया तक इनकी हेल्प करता इंडिया की, इन्होंने वो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ईरान को नाराज कर दिया, चाइना के साथ इनकी बनती नहीं है, रशिया को अब स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा है, लिहाजा ये अब बिल्कुल जो है अलोन रह गए हैं। अगर इन्होंने ये छप्पर का प्रोजेक्ट और ईरान के साथ की होती तो सी पैक का ये मुकाबला कर सकते थे पाकिस्तान के साथ और लोगों का भी रीजन के अंदर इनके साथ इंटरेस्ट हो जाता, लेकिन इनकी ये गलती की वजह से अब ये पूरा ब्लॉक बन गया है, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया एंड नाउ अफगानिस्तान। एज अ रिजल्ट ये जो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है इसमें इंडिया को वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है जी, अच्छा फिर वो कहते हैं जी कि यहां पे जो ISI हैं अलेजली वो कहते हैं, इस बात का मुझे कुछ इलम नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि शायद ISI ने ऐसा किया होगा, तो अलेजली जो अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने सिर्फ तालिबान के साथ दोस्तियां नहीं बनाई, उन्होंने इतनी चलाकी की ISI ने कि उन्होंने वहां के वो जो लालची और करप्ट गवर्नर्स थे और उनके जो लालची और करप्ट जर्नैल थे और लालची और करप्ट जो वॉरलॉर्ड्स थे उन सबको ब्राइब किया,
दे आर द मेन वंस,
उनको ब्राइब किया, उनको भी ब्राइब किया और उनकी भी लॉयल्टीज जो है अपने पास लाए हैं। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान हैज प्लेड इट वेरी स्मार्ट, ये कहना जी करण रविंद्र साहब का। ठीक है जी, अच्छा जी पाकिस्तान के अंदर ये हुआ जी कि बोरिस जॉनसन साहब जो हैं यूके के जो हैं प्राइम मिनिस्टर और जर्मन चांसलर जो एंजेला मर्कर, उन्होंने जी आज कल किया था बेसिकली, उन्होंने कल इमरान खान साहब को फोन किया था और अफगानिस्तान की पोजीशन के ऊपर बातचीत की थी, तो इमरान खान साहब ने इनको बहुत क्लियर किया। फिर से उन्होंने कहा जी हमारी कोई साइड्स नहीं है अफगानिस्तान में, हम इस रीजन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करते रहेंगे और अपना किरदार निभाएंगे, अफगानिस्तान को जब जब सपोर्ट चाहिए होगी हम देंगे। तो ये दोनों जो हैं अभी सेटिस्फाइड हैं, वो कहते हैं जी अब हम इमरान खान के साथ कॉन्स्टेंटली अब हम बात करेंगे और हम जो है इनके साथ जो है ये मामलात को जो अफगानिस्तान के हैं इनको आगे चलाएंगे। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जी वो अफगानिस्तान के अंदर खुली हुई है, आपको पता ही है जरा बहादुर लोग हैं हमारे, चाइना की भी खुली हुई है, वेस्टर्न बहुत सारे जो ईरान की भी है, वेस्टर्न जो एम्बेसीज हैं वो धड़ाधड़ बंद हो रही हैं वहां पे, इंक्लूडिंग इंडिया ने भी अपने बहुत सारे काउंसलेट ऑफिसेज और वो बंद कर दिए हैं। जो पाकिस्तान की एम्बेसी है जी वो अब लोगों को, क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है वहां पे ना, बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, उनकी अब एम्बेसीज बंद हो गई हैं, तो पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो बड़ी अब जो है बिजी हो गई है। उसकी वजह यह है कि वो धड़ाधड़ वीजे जो है, पहले उन्होंने कोई 400 वीजे फॉरेन जो हैं वो फॉरेनर्स और मीडिया वाले उनको किया है और फिर 800 और लोगों के लिए इन्होंने वीजे दिए हैं। इसकी जानकारी जो है वहां पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मंसूर अहमद खान, उन्होंने दी और वो कह रहे हैं ये जितने फॉरेन नेशनल्स हैं पाकिस्तान का वीजा लेके अब पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान से फ्लाइटें लेके ये जाएंगे अपने मुल्कों में, जो हमने बात एक हफ्ता पहले माजिद भाई की
जी, जी जी
आपको याद है हमने कहा था कि ये सारे बैक करेंगे, सिर्फ नेदरलैंड्स नहीं, सारे बैक करेंगे पाकिस्तान को कि हमारी जान यहां से छुड़ाओ, तो ये सारे उधर जा रहे हैं। इसके अलावा मंसूर अहमद खान साहब जो है, इन्होंने जी आज तालिबान के लीडर्स जो हैं, जैसे कि पुराने जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हामिद करजई और जो इनकी नई गवर्नमेंट के जो हेड वो कहते थे मैं हूं, लेकिन अब तो वो गवर्नमेंट नहीं है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, इनके साथ मुलाकातें की हैं और इनके साथ जो है बातचीत उन्होंने की है। उन्होंने ये तस्वीर अपनी आज ट्विटर पर डाली थी, उन्होंने कहा कि दोनों साइड जो है रीजन के अंदर इत्तफाक और वो चाहती हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने ये भी इनसे बात की है कि हम तौरखम का जो बॉर्डर है वो जरा खोलना चाहते हैं ताकि अगर सिविलियन फ्लाइट्स नहीं भी चल रही हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तानी, लेकिन ये उनका बड़ा स्ट्रिक्ट वादा है कि भई हम सिर्फ पाकिस्तानियों को तौरखम बॉर्डर से गाड़ी के थ्रू भेजेंगे, बाकी अगर किसी ने जाना है तो तैयारे पर जाएगा वो जी बैठ के। यूएस ब्लॉगर सिंथिया रिची जो है, उनका आपको पता ही है लास्ट ईयर तो बड़ी उन्होंने तबाही मचाई हुई थी और बड़े एलिगेशन लगाए थे कि मुझे रहमान मलिक साहब ने रेप किया है और जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब मुझे फिजिकली मैनहैंडल करते रहे। आज इस्लामाबाद के अपने फ्लैट में ये अनकॉन्शियस पाई गई थी, तो इनको भरल जी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो अब अभी तक ये बात नहीं कर सकी हैं, तो पुलिस ने कहा कि जैसे ही हमें मेडिकल इनकी रिपोर्ट आएगी और हमें पता चलेगा बात करने के लायक होंगी तो फिर हम आपको डिटेल्स जो हैं देंगे। पाकिस्तान के अंदर जी बड़ा अफसोस का आज एक वाकया हुआ है और वहां पर अशूरा का एक निकला हुआ था प्रोसेशन बहावल नगर के अंदर, तो वहां पर एक आदमी ने हाथ से एक हैंड ग्रेनेड जो है वहां पे फेंकने की कोशिश की है। पंजाब के होम मिनिस्टर जो है राजा बशारत, उन्होंने आज ये बात की है, तो उस लड़के को पकड़ लिया बहरहाल उस आदमी को, और लेकिन बहरहाल नुकसान तो हो गया, वो फट गया वहां पे। तो ये जामिया मस्जिद के पास जो है मुहाजिर कॉलोनी उसके पास ये हुआ है। बहरहाल भावलपुर के जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है उसमें सारों को जो है शिफ्ट किया गया है। आज जनाब है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की आज तो मैंने कहा कि इसके बाद अब क्या हम सुनाएंगे, लेकिन बहरहाल बड़ी खूबसूरत ये एक आर्टिकल है एंड दिस इज बीन रिटन बाय एना गैफर्ड। ये जो है ये पढ़ती हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो वाशिंगटन डीसी में है उसके अंदर पढ़ती हैं, और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है ज़ैनब ब्रिंगिंग लायनेस ऑफ करबला, और ये इतना कोई ब्यूटीफुल आर्टिकल है। वो कहती है कि मैं जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी कि ये करबला क्या है या इसकी हिस्ट्री क्या है। तो कहते हैं हमारे जो प्रोफेसर थे अम्बेसडर थे उस जमाने में अकबर अहमद साहब, तो वो आके वो विजिटिंग फैकल्टी थे उस यूनिवर्सिटी में, तो वो आके लेक्चर्स देते थे इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर। तो कहते हैं मैं भी थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई एज एन अमेरिकन स्टूडेंट, तो मैंने कहा मैं भी वहां पे मैं बैठती हूं और वो मैं उधर बैठ के मैं जो है वो करती हूं। वो कहती हैं जी कि ज़ैनब थी कौन, ज़ैनब जो हैं वो हजरत फातिमा तुज़्ज़ारा और जो अली हैं उनकी बेटी थी, और हसन और हुसैन जो हैं उनकी बहन थी। और जिस वक्त ये करबला का वाकया हुआ तो ये उस वक्त जो है वहां पे अपने दो बेटों और भाई के साथ मौजूद थी। ये वो कहती हैं जी वाकया ऐसा हुआ कि जो यजीद था उसके खिलाफ जो है जब इमाम हुसैन खड़े हुए और करबला के मैदान में गए तो वहां पे उनको सबको शहीद कर दिया गया और उसमें इनके दो बेटे भी चले गए, तो बाकी वहां पे कैंप वैम्प को आग लगा दी गई, तो इनको पकड़ के जब यजीद के जो हैं वहां पे दरबार में लेकर गए तो वहां पे ऑलरेडी जो इमाम हुसैन है उनका सर काटा हुआ था और उसने बड़ा बोस्ट किया अपनी तरफ से, तो उसने कहा कि ये देखो अब तुम्हारा भाई मेरे कदमों में पड़ा हुआ है। तो कहती है ये इतनी बहादुर औरत थी ज़ैनब जो थी, ये उधर खड़े होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर यू विल हैव लानतुल्लाह, यानी कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत आएगी, क्योंकि जिस सर को तुमने अपने पैरों में रखा हुआ है उस सर के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम किस किया करते थे, तो तुम्हारी तो मगफरत ही कोई नहीं है, और तुमने जो जुल्म का ये जो बाजार इधर गर्म किया हुआ है तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी जो है वो कोई है इसके अंदर कोई माफी है। तो ये कहती है जी एना गैफर्ड कहती है कि हम जो यहां पे अमेरिका में जी एना करनीना और जॉन ऑफ आर्क और इस तरह की लोगों को पढ़ते हैं, हमने तो कभी ज़ैनब की तरह के किरदारों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की है। सेवंथ सेंचुरी में एक औरत इतनी बहादुर थी कि एक टायरेंट के सामने जिसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया, जिसके बच्चों को उसके सामने बुचर कर दिया, और वो खड़े होकर उसके सामने बोलती रही है। और फिर कहती है कि इतनी बहादुर थी ये कि वापस मदीना आई है, मदीना आके इन्होंने ये नहीं किया कि बस बिल्कुल बैठ ही गई हैं, मदीना में आके फिर इन्होंने स्कूल शुरू किए और जो औरतें थी उस वक्त की उनको इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाना और उनको सिखाना और वो करती रही हैं। तो वो कहने लगी कि मुसलमानों के ऊपर मुझे हैरत होती है कि ऐसी बड़ी हस्तियां ज़ैनब की तरह की उनके बारे में कभी इन्होंने दुनिया में बात ही नहीं किया, जो हम नॉन मुस्लिम्स हैं हमें तो पता ही नहीं है इस तरह के कि कोई इस तरह के भी दुनिया में किरदार हैं कोई. तो आज ये बहुत ही खूबसूरत जो था आर्टिकल था इनका, ही कुड सम टाइम इट केम सम टाइम बैक बट आई थॉट के अब जाहिर है आज वो है 10 मुहर्रम है तो उसके लिए जो है, तो ये इन्होंने आज बहुत उनकी जो है वो तारीफ की हुई है. वो कहते हैं कि इनको कहा जाता था अकीला है बनी हाशिम, यानी कि द वाइज वन ऑफ बनी हाशिम. और बहुत सारे मुस्लिम घराने जो हैं अब अपनी बेटियों के नाम जो है अकीला रखते हैं इनके ऊपर. तो वो कहते हैं इस चीज को सिर्फ पढ़ने की, आजकल की जो सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म और ये जो फेमिनिज्म की सारी हम बातें करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ज़ैनब की स्टोरी पढ़ना जरूरी है. तो वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल. एंड जनाब वी आर राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज. जो अक्षय कुमार साहब हैं उनकी आज बेल बॉटम जो फिल्म है वो आ गई है, इसके अंदर वानी कपूर, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी भी हैं. अक्षय कुमार जो हैं वो एक रॉ एजेंट का रोल इसमें प्ले कर रहे हैं और ये पहली फिल्म है जो कि अब थिएटर्स में लगी है पेंडेमिक के खुलने के की जो सख्तियां थी उसके खुलने के बाद. तो इसको काफी अच्छे जो है वो रिव्यूज मिल रहे हैं. एंड जनाब न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है वो उसने आके पाकिस्तान के साथ जो है 18 साल के बाद पाकिस्तान में आना था और 3 ODIs और 5 T20s खेलने थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है वो काफी जरा डामाडोल सी हुई हुई है क्योंकि वो कहते हैं जी रावलपिंडी जो है इट्स जस्ट अबाउट फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम काबुल, तो वहां पे पता नहीं क्या अब सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान में होंगे. बहरहाल जी ये वहां पे अब डिसाइड करेंगे जल्दी कि उन्होंने पाकिस्तान में आना है कि नहीं आना. इसके अलावा आपको पता ही है कि अफगानिस्तान की सीरीज पाकिस्तान के साथ शुरू होने वाली थी और वो भी कुछ डामाडोल लग रही थी, लेकिन तालिबान से पूछा है इन्होंने, अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पूछा था इनसे कि क्या हम अपनी सीरीज जो है पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, तो उन्होंने इसकी जो है उनको इजाजत दे दी है. तो एज अ रिजल्ट वो कहते हैं अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो लॉजिस्टिकल इशूज होंगे पाकिस्तान के साथ, अगर ये खेलना चाहते हैं तो हम इनको नहीं रोकेंगे. एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट समर खान, पहली पाकिस्तानी खातून है जो कि K2 के बेस कैंप पे पहुंची थी अपनी बाइसिकल पे. और इसके अलावा इन्होंने पहली पाकिस्तानी खातून है जो कि बुरबुचो की पीक पे जो कि 6,250 मीटर्स अप है वो क्लाइंब करके गई थी. एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पाकिस्तानी टू समिट टू माउंट किलिमंजारो. तो बहुत ही आइकॉनिक ये पर्सनैलिटी है जनाब.
हाँ जी ये थी आज की खबरें और सब अभी कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम होंगे उसके फौरी बाद मुहर्रम के एतबार से हम एक खूबसूरत आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं. तो आप स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम बी राइट बैक. शादी जी थैंक यू सो मच.
आगे
खबरें इंशाल्लाह कल.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
समर एन आजादी मेला बरोस हफ्ता अगस्त 28 सुबह 11 से रात 10 बजे तक स्वागत बैंकेट हॉल 6991 मिल क्रिक ड्राइव मिसिसागा में फ्लैग होस्टिंग मिली नगमे फेस पेंटिंग शॉपिंग स्टॉल फूड कोर्ट किड शोज एंड मोर फ्री एंट्री एंड पार्किंग स्पॉन्सरशिप या स्टॉल की बुकिंग के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए अयूब सिफ्रा 416-577-0055 416-577-0055 समर एन आजादी मेला
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिगड़म लड़ा सकते हैं बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं कॉल हैरिसन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Asian Food Center 905-793-1338 After kitchen ki tamam zaruriyat ek hi chhat pe Fruits and vegetables, groceries and staples, fresh dairy and eggs, favorites and confectionery, branded foods, personal care and household, sweets and samosas. Order now for in-store free pickup. 905-793-1338 Home delivery is also available. Asian Food Center 905-793-1338 Asian Food Center.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसा मंद नाम हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस रिन्यूअल ऑप्शंस मॉर्गेज डिफिकल्टीज डाउन पेमेंट इश्यूज सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फंड सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659 लाइसेंस नंबर 10530
Ayyo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden, yapir, silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see, must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
अपने घर की खूबसूरती के लिए आज ही कॉल कीजिए SS पेंटिंग किसी भी इंटीरियर या एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल ड्राईवॉल रिपेयर वाटर डैमेज वॉलपेपर रिमूवल प्रोफेशनल पॉपकॉर्न स्टोको सीलिंग एंड रिपेयर विद गारंटी कॉल टुडे SS पेंटिंग 647-271-1974 647-271-1974 SS पेंटिंग
क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तालीम के मैदान में सबसे आगे हों तो उसे आज ही इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में रजिस्टर करवाएं, जिसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने टॉप पब्लिक साउथ वेस्टर्न ओंटारियो का स्कूल करार दिया है स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्कूल बिल्डिंग एंड अ ब्रांड न्यू ग्रैंड जिम मजीद मालूम के लिए कॉल करें 519-740-6855
हर साल अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन सादिकाबाद रहीम यार खान पाकिस्तान में एक ही जगह पर 150 से जायद यतीम और नादिर बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम तश्कील देता है इस साल भी अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनाकिद करने जा रहा है जो नवंबर दिसंबर में मुनाकिद किया जाएगा एक बच्ची की रुख्सती पर तकरीबन $1,000 का खर्चा आता है आपकी दी हुई डोनेशन इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी और टैक्स रसीद भी फराहम की जाएगी आपसे इल्तिजा और अपील है कि इस नेक काम में दिल खोल कर मदद करें मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 416-471-9636 या इनकी वेबसाइट पे विजिट करें www.awfca.org अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन
रेडियो स्टार بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام کے سلسلے کا خصوصی پروگرام. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج روز عاشور ہے. سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں نواسا رسول جگر گوشہ علی و بتول نے اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ایسی قربانی دی جس کی مثال نہ آج تک پیدا ہو سکی ہے اور نہ آئندہ ہوگی. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ریگزار میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ وہ کارنامہ رقم کیا جس کی مثال نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت کی ہے جناب مولانا امین جعفری صاحب نے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور اس دن کی مناسبت سے ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ فرمایا. سامعین، آج سے قریباً 14 صدیاں پیشتر سن 61 ہجری میں کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام نے جو ایک عظیم قربانی دی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. کیا ہوا کہ حضور کی رحلت کے صرف 61 برس بعد ہی یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور امام حسین کو یہ جو ہے ان حالات سے دوچار ہونا پڑا. میں قبلہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جناب سرور کائنات نے جس نواسے کے بارے میں بار بار یہ ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یعنی نانے سے نواسا تو سمجھ میں آتا ہے، نواسے سے نانے کی سمجھ، وہ ہم قبلہ سے پوچھیں گے. لیکن ایسے کیا حالات ہوئے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑا اور ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم اور جو بربریت ہوئی وہ کیوں پیش آیا یہ واقعہ؟ جی مولانا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، بسم رب الشہداء. غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. شاعر مشرق، حکیم الامت، پاکستان کا خواب دیکھنے والی عظیم ہستی، علامہ اقبال کے اس شعر میں ایک عجیب درد ہے، ایک داستان ہے. عاشورہ وہ روز ہے جس دن تمام انبیاء نے گریہ کیا، کائنات کی تمام مخلوقات گریہ کنا ہے. اس روز کے متعلق ہمیں جو احادیث ملتی ہیں تاریخ میں، جو دیگر انبیاء سے حتیٰ جو روایات ملتی ہیں، عجیب و غریب ہیں کہ جناب نوح سے روایات ہیں، جناب آدم سے روایات ہیں، ہمارے پاس جناب موسیٰ سے روایات ہیں، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات ہیں، کہ جو اس سرزمین سے گزرا، جناب ابراہیم سے ہمارے پاس روایات ہیں، جو اس سرزمین سے گزرا، پھر مولا کائنات امیر المومنین سے روایات ہیں، جو اس سرزمین سے گزرا اس نے وہاں ایسا محسوس کیا کہ یہاں تاریخ کا کوئی بہت بڑا سانحہ حادثہ ہونے والا ہے جو حق اور باطل کا معیار بنا دے گا کسی چیز کو. ہر سال جب یہ روز آتا ہے، ہر وہ شخص جو اسلام کو حق اور باطل کے تناظر میں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کا دل ایک عجیب سے ماحول میں، فضا میں چلا جاتا ہے، چاہے اس کو پتا بھی نہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو. جانے محترم، آپ کا یہ سوال کہ 50+ ایئرز کے بعد یہ ایسا کیا ہوا کہ رسول اکرم، آخری ہدایت کنندہ جو خدا کا پیغام زمین پر لے کر آئے، 124,000 پیغمبروں کے بعد 50 سال سے تھوڑے عرصے زیادہ میں یہ سانحہ ہوا، اور وہ خاندان جس کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ آپ نے خود ماشاءاللہ فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس کی ماں کے لیے رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، احترام میں جب رسول اکرم کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم فقط احترام فرما رہے ہیں، یہ تمام انبیاء کو ریپرزینٹ فرما رہا ہے میرا نبی، ان کے نواسے کو، اس ہستی کے بیٹے کو جناب سیدہ کے، یہ کیا ہوا ہے؟ اس کے کئی تناظر ہیں، اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں جن میں اس گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. بہت اہم جو موضوع بنے گا وہ ہے حق اور باطل کی پہچان. خداوند متعال نے انسان کو زمین پہ بھیجا، اس کی ہدایت کے لیے انتظامات فرمائے، ان انتظامات میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شیطان اور انسان کا نفس ہے، جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیریل کرتا رہے گا، کنارے سے ہٹاتا رہے گا. یہ معاملہ رسول کی رحلت کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. رسول اکرم جب دنیا سے گئے ہیں تو یہ تلخ اور تکلیف دہ حقیقت ہے کہ اسلام کا جو سفینہ تھا وہ ڈیریل، وہ دو مختلف ڈائریکشن میں جانے لگا، سنک ہونے لگا ایک طرح سے کہیں. رسول کے دنیا سے جانے کے بعد، آنکھ بند کرنے کے بعد، امت اسلامیہ دو گروہوں میں بٹ گئی تھی.
جی.
کیونکہ رسول کے نائب ہونے کے معاملے پہ اختلاف بنا تھا.
جی.
ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ رسول نے اپنی زندگی میں کوئی جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا.
جی.
دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، رسول نے واضح طور پہ مختلف مقامات پہ اپنا جانشین اور ان جانشینوں کا تسلسل بیان فرمایا ہے.
جی.
یہ بنیادی طور پہ اختلافی نظریہ تھا، جو کہ آج وہ دو گروہ تھے اس زمانے میں، آج یہ گروہ دو سے بڑھ کر 72 ہو چکے ہیں اور پلس میں بھی.
جی.
جب رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی ہے، ان دو گروہوں کے درمیان اختلافات نے جڑ پکڑی ہے، اصلی قضیہ یہاں سے شروع ہوا تھا. ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ رسول نے ہمیں کوئی اپنا نائب نہیں بتایا اور ہمیں خود چننا ہے، ہمیں خود منتخب کرنا ہے اپنی ہدایت کے لیے. ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ہم خود نہیں چن سکتے، انبیاء کی بعثت جو ہے وہ خداوند متعال فرماتا ہے، تو انبیاء کے پیغام اور اس کی پاکیزگی کی سطح اتنی بلند ہے کہ اس کے لیے عام آدمی کسی کو منتخب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کے لیے بھی اس جیسے تو نہیں لیکن کسی حد تک معصوم، گناہوں سے پاک، علم سے پر، شرافت، تقوی، پاکیزگی اور شجاعت کا پیکر وجود ضروری ہے. وہ نبی کی سطح کا نہیں ہوگا لیکن نبی کے شوز پہننے کی قابلیت رکھتا ہے، ایک گروہ کا یہ کہنا تھا. اب یہ گروہ جب آگے بڑھتا ہے تو اکثریت نے خلافت کو چنا کہ ہم رسول کے نائب کے طور پہ خلافت کی رائے اختیار کرتے ہیں. جناب رسول کے جانے کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم. خلیفہ چہارم کی جب نوبت آئی، باری آئی خلیفہ بننے کی، تو یہ وہ گروہ تھا جو دراصل امام علی کا پیروکار تھا.
جی.
اور وہ گروہ اس بات کا نظریے کا مخالف تھا کہ ہم خود چنیں گے. تو یہاں پر آ کر ایک بڑا اچھا برج بن گیا کہ امام علی اور ان کے پیروکار جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول نے نائب کی حیثیت سے امام علی کو چنا اور ان کے پیروکاروں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا.
یعنی دوبارہ اکٹھے ہو گئے
دونوں گروہ. جی ہاں، ایک برج بن گیا اور دو گروہ اکٹھے ہو گئے. یہاں پر آ کر ایک گروہ جو خلافت ہی کا پیروکار تھا، نظریہ خلافت کا، جو شام میں تھا، امیر معاویہ کے نام سے اس نے بغاوت کی اور امام علی کی خلافت یا امامت کو قبول نہیں کیا.
جی.
جب قبول نہیں کیا تو یہاں ایک گہرا شدید اختلاف ہوا. اس اختلاف کی بنا پر کئی جنگیں ہوئی ہیں جو امیر معاویہ اور نائب رسول کے درمیان ہوئی ہیں. تین بڑی جنگیں ہیں جن میں حفاظ کے قتل ہوئے ہیں، جن میں نماز تہجد پڑھنے والوں کے قتل ہوئے ہیں. ایک بڑا خونی زمانہ تھا یہ اسلام کے لیے. اس دوران امام علی بھی شہید ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے صاحبزادہ امام حسن تشیعوں کے حساب سے 12 امام اس دنیا میں موجود ہیں. امام حسن تشریف لاتے ہیں اور امام حسن جو ہیں وہ امیر معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں اور یہ جنگ اور یہ اختلافی معاملات ایک حد تک ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ معاملہ جب ختم ہوئے تو صلح کے کچھ نکات ہیں جن میں سے ایک اہم نکتہ تھا کہ امیر معاویہ نے جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ڈیل کی تھی, یہ طے کیا تھا, یہ شرائط میں سے ایک شرط تھی صلح کی کہ میرے بعد میرے خاندان میں خلافت نہیں رہے گی اور ہم خلافت کسی اور انداز سے آگے بڑھائیں گے, اور یہ طے ہوا تھا کہ آگے معاملہ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے گا. یہ طے ہوا تھا کہ میرے خاندان میں نہیں ہوئی, یہ نقطہ تھا اہم. اور اس نقطے پر آ کے یہ کربلا کا سانحہ جڑ پکڑتا ہے. امیر معاویہ کے دنیا سے جانے کے بعد
یزید کو نامزد کیا,
یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے اور جو ویل نول گناہگار معروف اپنی عیاشیوں میں غلطاں معذرت ہر قسم کے گناہوں کا شکار اور ایک ثابت شدہ فاسق و فاجر وجود کا حامل شخص تھا. امیر معاویہ نے پہلا یہ قانون توڑا, اس کے بعد یزید کو منع کیا کہ حسین سے بیعت کی بات نہ کرنا.
صحیح.
یزید تخت نشین ہوتا ہے اور اس نے کچھ لوگوں سے بیعت کی بات کی, ان میں سب سے پہلے امام حسین کو اس نے رابطہ کیا مدینے میں. یہاں سے جو ہے معاملہ نے تیزی پکڑی ہے. ایک گروہ جاتا ہے مدینہ, امام حسین سے سوال و جواب کرتا ہے, امام کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تشیع کے عقیدے کے مطابق خدا کے دین کا اختتام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا کہ رسول 124,000 پیغمبر آئے چلے گئے اور امت پہ چھوڑ کے چلے گئے وہ اپنا معاملہ.
جی.
اس معاملے کو امانت کو سنبھالنے کے لیے قابلیت چاہیے تھی, وہ مجھ جیسا آپ جیسا انسان نہیں رکھتا.
جی یہ بات بھی ہے کہ یزید نے شریعت میں جو ہے تبدیلی کرنے کی کوشش کی.
جو شخص نفس پرست ہوگا, شہوت پرست ہوگا, اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دراصل جس طرح آج بھی ہو رہا ہے کہ حکومتیں بنانے کے لیے لوگ رنگ اڑ لیتے ہیں, لبادہ اڑ لیتے ہیں دین کا یا کسی بھی نظریے کا. حتیٰ آپ دیکھیں کرسچینٹی میں مشکلات رہی ہیں, جوڈیزم میں مشکلات رہی ہیں, لوگ دین کا لبادہ پہن کر کیا کر رہے ہیں کہ اپنی منمانی کر رہے ہیں. تو یزید کا مرحلہ وہی تھا ایگزیکٹلی کہ اس نے علماء کو خریدا, دیندار طبقوں کو اس نے خریدا, اور ان کو خریدنے کے بعد ایسے فتاوی جاری کروائے کہ فلانا شرعی مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اوور رائڈ کر دیے رسول اکرم کے جو احکامات تھے, قرآن سے جو کانٹراڈکٹ کر رہی تھی چیزیں ان کو لا کر عوام میں رائج کر دیا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, جو ریڈ لائن تھی. امام حسین نے کہا نہیں, دس از اٹ. ایک حد تک برداشت کیا تھا معاملہ, اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں, اب مجھے حتمن جو ہے کاؤنٹر کرنا ہوگا, روکنا ہوگا. ڈزنٹ میٹر کہ میرے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ نہیں آتے ہیں. اس موقع پر امام حسین نے مدینہ کو ترک فرمایا, حج کے لیے مکہ شریف آئے. مکے میں حالات بہت زیادہ سیاسی طور پہ ابتر ہو چکے تھے اور حرم کعبہ میں احتمال تھا کہ یزید کے جاسوس گھوم رہے تھے تلواریں لیے ہوئے اپنے لباسوں میں چھپائے ہوئے, کہ وہ اہل بیت اور ان افراد کو جو ان کے ساتھ تھے, اصحاب تھے امام حسین کے, ان کو قتل کر دیتے.
اچھا یہ بھی درست ہے کہ بہت سارے جو صحابی اس وقت موجود تھے جناب سرور کائنات کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی.
جی ہاں, بےتحاشا کراؤڈ ایسا تھا ان کے اصحاب میں سے بھی اور اصحاب کی اولادوں میں سے بھی جنہوں نے جاہو دنیا شہوتوں کی وجہ سے, سیاسی منصب کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے
حق کا ساتھ نہیں دیا
امام حسین کو. انہوں نے کہا کمپرومائز کر لیں, یزید کے ساتھ ڈیل کر لیں. کوئی ہماری نظر میں امام کا مطلب ہوتا ہے صاحب عصمت, وہ ہستی جو سب سے شجاع ہوتی ہے کائنات میں اس موقع پر, نائب رسول کی کے تناظر میں، تو وہ کسی خوف کا شکار نہیں ہوتی، کسی لالچ کا شکار نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا وظیفہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ورنہ جیسے اقبال نے فرمایا